स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 6 नवंबर और दिन रविवार। प्रदूषण से घुट रही दिल्ली से चिंतित दिल्लीवासियों ने मास्क पहनकर किया विरोध प्रदर्शन। इस पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने भी उठाए कई कदम। इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रही जेएनयू के लापता छात्र नजीब की मां दिल्ली पुलिस की हिरासत में। संडे दिन भर में आज होगी मुलाकात वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर से।
प्रधानमंत्री का सबसे अहम काम है कि सब फिरकों को जोड़े और सबको ऐसा महसूस हो कि हम भारतीय हैं और हमारा देश भारत है और भारत के उत्थान में हम भी भाग लेंगे।
और भी बहुत कुछ, लेकिन उन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जंतर मंतर पर स्कूली बच्चों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों ने मास्क लगाकर प्रदर्शन किया। इधर दिल्ली सरकार ने आपात कदम उठाते हुए दिल्ली में निर्माण कार्य समेत कई तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने 3 दिनों के लिए स्कूलों को बंद कर दिया है और कृत्रिम बारिश कराने पर भी विचार कर रही है। सरकार ने कूड़ा जलाने पर भी फिलहाल पूर्ण पाबंदी लगा दी है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लापता छात्र नजीब अहमद को खोजने के लिए दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर में हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए लोग जेएनयू छात्र संघ के आह्वान पर इंडिया गेट पर एक मार्च के लिए एकत्र हो रहे थे। इनके साथ पुलिस ने नजीब की माँ फातिमा नफीस को भी हिरासत में ले लिया है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जेकब जूमा ने कहा है कि रंगभेद नीति के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के दौरान उन्होंने 10 साल जेल में बिताए थे और उन्हें जेल जाने से डर नहीं लगता। उनके और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर धनी भारतीय व्यवसायियों के साथ गलत तरीके से व्यापार करने के आरोपों पर आधिकारिक तौर पर भ्रष्टाचार रोधी जाँच के न्यायिक जाँच की सिफारिश करने के बाद पहली बार उन्होंने इस पर सार्वजनिक तौर पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा, अगर मुझे आज गिरफ्तार कर भी लिया जाता है तो मुझे जेल की आदत है। मैं जेल में 10 साल तक था। जेल जाने के नाम से मैं डरूंगा नहीं। ये थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जेकब जूमा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तरी सीरिया में अमेरिका समर्थित लड़ाकों ने कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट का गढ़ समझे जाने वाले शहर रक्का पर दोबारा कब्जा करने के लिए अभियान शुरू करने की घोषणा की है। रक्का शहर को सीरिया में इस्लामिक स्टेट की राजधानी समझा जाता है। ये लड़ाके सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस नाम के एक समूह से संबंधित हैं जो कुर्द और अरबी मिलिशिया का गठबंधन है। इनका कहना है कि इन्हें अमरीका समर्थित सेना के हवाई हमलों का समर्थन प्राप्त है और ये कुछ घंटों में अपना अभियान शुरू करेंगे। हालांकि शहर पर दोबारा कब्जा करने के लिए इस गुट के पास पर्याप्त संसाधन हैं या नहीं, इस पर विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं। इराक के तिक्रित और समारा शहर में हुए 2 आत्मघाती हमलों में 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। दोनों हमलों में विस्फोटक से भरे एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया था। स्थानीय पुलिस के मुताबिक तिक्रित में तब धमाका हुआ जब कारें एक सुरक्षा नाके पर जमा हो रही थीं। समारा शहर में आत्मघाती हमला मस्जिद के पास खड़ी एक कार में हुआ जिसमें शिया तीर्थयात्रियों के काफिले को निशाना बनाया गया। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। आज है नवंबर की 6 तारीख और दिन रविवार। तो रविवार में हम आपको संडे दिन भर में एक विशेष मेहमान से बातचीत ज़रूर सुनवाएंगे कार्यक्रम के आखिर में, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में प्रदूषण का जहर फैलता जा रहा है। दिल्ली घुट रही है। इसकी वजह है इसकी हवाओं में प्रदूषण। पिछले कुछ दिनों से और ख़ासकर दीपावली के बाद से तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दिल्ली पर कोहरा छाया है और राजधानी दिल्ली में नहीं बल्कि हम किसी हिल स्टेशन पर हैं। लेकिन ये दरअसल वायु प्रदूषण है। इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और जिनको दमा या धूल कणों से एलर्जी है उनकी हालत की तो खैर बात ही, क्या की जाए, उनकी हालत और ख़राब होती जा रही है। दिल्ली में आज कई बच्चों और उनके माता पिता ने मास्क पहनकर प्रदर्शन किया और सरकार पर दबाव बनाया कि वो कुछ करे। जब प्रदर्शन हो रहा था तो उस वक्त बीबीसी के हमारे साथी दिलनवाज पाशा भी वहां मौजूद थे। सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण खतरनाक स्तर को पार कर गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज स्कूली बच्चों ने अपने परिजनों और शिक्षकों के साथ प्रदर्शन किया और कहा कि वो खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। अगर बात एयर क्वालिटी इंडेक्स की करें तो आज सुबह दिल्ली में इसका स्तर था 999। ये बेहद खतरनाक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 300 से ऊपर हो तो उसे बेहद खतरनाक माना जाता है और दिल्ली में ये 1000 के पास है। प्रदर्शन में शामिल डॉक्टर नितिन वर्मा सलाह देते हैं।
कई चीजें ऐसी हैं जो सामने नजर आ जाती हैं और कई चीजें ऐसी हैं जो सामने नजर नहीं आती। अब पोल्यूशन 300 हुआ या 400 हुआ, हो सकता है कि इमीडिएटली आपको कुछ नहीं हो रहा हो, आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही हो, लेकिन यही पोल्यूशन जो है आपके आपके बॉडी के अंदर जा रही है, आपके लंग्स के अंदर जा रही है, आपके हार्ट के अंदर जा रही है, आपकी किडनी के अंदर जा रही है और कुछ ना कुछ हल्के हल्के डैमेज कर रही है।
प्रदर्शन में शामिल ये बच्ची कह रही है कि ये शर्म की बात है कि हमें प्रदर्शन के प्रति लोगों को आगाह करने के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण के मुद्दे पर आपात बैठक भी की और इसके बाद उन्होंने कई आपात कदम उठाने का ऐलान भी किया, जिसमें राजधानी दिल्ली में निर्माण कार्यों पर रोक के साथ साथ कृत्रिम वर्षा पर विचार किया जाना भी शामिल है।
एक सुझाव अभी कैबिनेट के अंदर आया था आर्टिफिशियल रेन को लेके, लेकिन वो केंद्र सरकार में उसकी जरूरत पड़ेगी, उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी इफेक्टिवनेस, क्या वो इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव है और हो सकता है क्या, इसको एग्जामिन करने के लिए एनवायरमेंट सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए गए कि वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर इसके पॉसिबिलिटीज को और इफेक्टिवनेस को दोनों को एग्जामिन करें।
लेकिन सवाल यही है कि क्या ये दिल्ली की जहरीली हवा को साफ करने के लिए काफी होंगे। दिलनवाज पाशा, बीबीसी दिल्ली।
तो दिलनवाज पाशा के इस रिपोर्ट में अभी आपने सुना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई और उसके बाद जो कुछ फैसला लिया उसको वो प्रेस को जानकारी दे रहे थे। लेकिन दिल्ली सरकार ने और क्या कुछ फैसला लिया है उसके बारे में बता रहे हैं मानसी दास और अमर शर्मा।
अगले 3 दिनों तक दिल्ली के सारे सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे।
10 दिनों के लिए बदरपुर पावर प्लांट को भी बंद रखने की घोषणा की गई है।
बदरपुर पावर प्लांट से राख उठाने पर रोक लगाई गई है।
दिल्ली में 5 दिनों तक सभी प्रकार के निर्माण कार्य बंद रहेंगे।
सोमवार से सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा।
10 दिनों तक दिल्ली में जनरेटर चलाने पर पाबंदी रहेगी।
एक बार फिर से ऑड इवन को लागू करने की तैयारी की जा रही है।
दिल्ली में कूड़ा चलाने पर फिलहाल पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है।
10 नवंबर से सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग शुरू होगी।
कृत्रिम बारिश यानी कि नकली बारिश पर भी विचार किया जा रहा है।
ये तो फैसले थे जो दिल्ली सरकार ने लिए है प्रदूषण पर काबू पाने के लिए, लेकिन वो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम और आप यानी आम इंसान भी कर सकते हैं जिससे आपको कुछ हद तक राहत मिल सकती है। क्या है वो कदम बता रहे हैं विकास त्रिवेदी।
दौड़ ना लगाएं और व्यायाम ना करें, ऐसा करने पर आपको ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत होती है। प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि इससे भी खतरा हो सकता है। आप जिस कमरे में रहते हैं उसमें कुछ पौधे रख लें, वो कुछ हद तक हवा साफ कर सकते हैं। यदि आप खर्च कर सकते हैं तो एयर प्योरीफायर खरीदने की सलाह भी दी जा रही है। घर में झाड़ू ना लगाएं बल्कि सफाई करने के लिए गीले कपड़े के पोंछे का इस्तेमाल करें। अगरबत्ती ना जलाएं या कुछ ऐसा ना करें जिससे धुआं निकलता हो। घर में अगरबत्ती या मॉस्किटो कॉइल जलाने से पैदा होने वाला धुआं प्रदूषण को और खतरनाक बना सकता है। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें। बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर से बाहर की हवा से बचाएं।
ये थे विकास त्रिवेदी।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
एक बार फिर स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। इस वक्त हो चुके हैं 7:39 और 10 सेकंड। अगर कोई पूर्व सैनिक खुदकुशी कर ले तो क्या उनके परिजनों को हिरासत में लिया जा सकता है? कोई मां अपने लापता बेटे के लिए सड़कों पर उतरे तो क्या उसे भी हिरासत में लिया जा सकता है? जाहिर है आप कहेंगे कि शायद ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन बात अगर दिल्ली पुलिस की हो तो ये हो सकता है। जी हाँ, लगभग 23 दिनों से लापता जवाहरलाल विश्वविद्यालय के छात्र नजीब अहमद की माँ और कई लोगों ने आज दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया, इलाके में धारा 144 लगा दी गई और फिर जो कुछ थोड़े बहुत लोग वहाँ किसी तरह पहुँच सके थे उनको हिरासत में ले लिया गया। नजीब की माँ फातिमा नफीस भी वहाँ मौजूद थी, जिन्हें पुलिस ने घसीटते हुए गाड़ी में बिठाया, ये उनका दावा है और ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें दिल्ली के मायापुरी थाने में ले जाया गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा ने उनसे टेलीफोन पर बात की तो उनका कहना था,
आपका कैमरा था वहाँ पे इंडिया गेट पे जब मुझे घसीट के डाला गया गाड़ी में, देखा था आपने किस अंदाज में डाला पुलिस ने मुझे वहाँ से। हाँ, बस उस कहने के लिए बचा क्या, मैं तो पूरी कुचली हुई हूँ, मेरे हाथ पैर सब दर्द कर रहे हैं, मुझे उंगली कुचल गई है, हाई ब्लड प्रेशर शुगर पेशेंट हूँ, मुझे कुछ भी हो सकता है कभी भी।
जी जी,
मेरी बहुत मतलब इस वक्त हालत ऐसी है कि मैं कहीं भी किसी भी हालत में कुछ भी लगता है दो चार घंटे के बाद मुझे।
मतलब आप कह रही हैं आपकी तबीयत खराब हो रही है और पुलिस ने आपके साथ जो है बल प्रयोग,
वो तो मेरे बेटे को ढूंढ के ला नहीं सकती, तो ये तो कर ही सकती है। मैं 23 दिन से सीख कर गा रही हूँ, मेरा बेटा मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, हर हाल में चाहिए, कहीं से ला दो, मैं नहीं पूछूंगी आपको कहाँ से मिला, बस मुझे लूंगी और चली जाऊंगी, मुझे इससे लेना देना नहीं मेरा बेटा कहाँ था, किसके पास था, कहाँ से आपने रिसीव किया, बस मेरा बेटा मुझे दे दो, मुझे किसी से कोई कंप्लेन नहीं करना है, सिर्फ मेरा बेटा मुझे दे दो। बार बार मैं यही कह रही हूँ सारे पुलिस से, डीसीपी से, पुलिस से, जो जो मुझे मिलता है सबसे यही कह रही हूँ, चैनल वालों से, लेकिन मेरी कोई फरियाद सुनी कहाँ रहा है,
मेरी कोई फरियाद सुनी कहाँ रहा है। ये बता रही थी जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की माँ फातिमा नफीस। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन से जुड़ चुके हैं मेरे साथी दिलनवाज पाशा, जो इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने पर। दिलनवाज, बताएं कि वहाँ किन लोगों को पुलिस लेकर गई है?
जी, यहाँ पर नजीब की बहन सदफ हैं और उनके साथ में और कुछ जो प्रदर्शनकारी थे वो हैं, उनको थाने के अंदर रखा गया है। यहाँ पे बाहर प्रदर्शनकारी हैं, जब मैं यहाँ पहुंचा तो वो पुलिस से कह रहे थे कि हमें उनसे जाकर मिलने दिया जाए, लेकिन यहाँ पुलिस की बहुत भारी मौजूदगी है तो वो लोग प्रदर्शनकारी थाने के बाहर थे। जब मेरी नजीब की माँ से बात हुई थी उस समय उन्हें मायापुरी थाने से कहीं और ले जाया जा रहा था, कहाँ ये वो नहीं बता पा रही थी क्योंकि बाहर अंधेरा था और शायद वो दिल्ली को उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानती है। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो मायापुरी थाने पहुंच गए थे, उन्होंने ट्वीट किया था कि मैं वहां जा रहा हूं, तो शायद इस वजह से पुलिस उनको वहां से ले गई। यहां पे अभी जो प्रदर्शनकारी आए थे जिनसे मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि कानून ये कहता है कि महिलाओं को दिन छिपने के बाद हिरासत में नहीं रखा जा सकता, उनके कानूनी अधिकार हैं जिनकी यहाँ पर अवहेलना हो रही है। जी इकबाल
जी, दिलवाज, अगर आपके साथ कोई छात्र जो उस प्रदर्शन में मौजूद थे या कोई और सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो आप उनसे हमारी तरफ से कुछ बात करें और उनसे पूछें कि क्या हो रहा है।
मेरे साथ यहाँ पर शबनम हाशमी है, आप इनसे बात कर सकते हैं बीबीसी पे, ये शबनम हाशमी, आप इनसे पूछ सकते हैं, काफी देर से यहाँ है तो बात कीजिए।
शबनम, क्या आपकी पुलिस कोई बात हो रही है? पुलिस साफ शब्दों में कह रही है कि वो क्या करने वाली है इन छात्रों के साथ और नजीब की बहन के साथ, क्या उन्हें हिरासत में लिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा या क्या किया जाएगा?
देखिए, पुलिस से बात मेरी नहीं हुई, लेकिन मेरे साथ मैमुना है एडवा की, उन्होंने अभी डीसीपी को फोन किया था, उसको हो गया आधा पौना घंटा और उन्होंने कहा कि हमने सबको रिलीज कर दिया है। अभी 5 मिनट पहले मेरी बात हुई है सदफ से और उनका कहना यह है कि वो अभी अंदर है और उनके साथ तकरीबन 150 स्टूडेंट अंदर है, माँ को ऑफिशियली रिलीज कर दिया है लेकिन वो घर पहुंची नहीं है। ये कहा जा रहा है कि उन्हें पुलिस की जीप में बैठा के और गोल गोल घुमाया जा रहा है। वो कहाँ पे है अभी किसी को नहीं मालूम है।
वो कहाँ पर हैं ये अभी किसी को नहीं मालूम है। दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने से ये बता रही थी एक सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी। बहरहाल दिलनवाज, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आज आप सुबह से बहुत मेहनत कर रहे थे जब प्रदूषण को लेकर बच्चे और उनके माता पिता प्रदर्शन कर रहे थे, आप उस वक्त भी वहाँ मौजूद थे और अभी इस वक्त आप दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने पर मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
एक दफ़ा फिर स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ इकबाल अहमद और इस वक्त हो चुके हैं 7:44 और 27 सेकंड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज रविवार है यानी संडे है, तो आज हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम संडे दिन भर का आज प्रोग्राम होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि संडे दिन भर में हम कोई मशहूर हस्ती से आपको मिलवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो संडे दिन भर में आज आपकी मुलाकात करवाई जाएगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर से, जो पिछले दिनों BBC के स्टूडियो में तशरीफ लाए थे और उनसे बात की हमारे सहयोगी और BBC हिंदी के इस वक्त के संपादक राजेश जोशी। और राजेश जोशी ने सबसे पहले यही पूछा कि पिछले 2-2.5 सालों में भारत में जो कुछ हो रहा है उसे मणिशंकर अय्यर कैसे देखते हैं।
देश नष्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री का सबसे पहला काम है कि वो देश को जोड़े। इलेक्शन के समय विभाजन हो जाती है समाज में, लेकिन इलेक्शन होने के बाद और प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री का सबसे अहम काम है कि सब फिरकों को जोड़े और सबको ऐसा महसूस हो कि हम भारतीय हैं और हमारा देश भारत है और भारत के उत्थान में हम भी भाग लेंगे। लेकिन क्योंकि मोदी एक राजनैतिक तौर पर ये दिखाना चाहता है कि सारा भूत जो है हमारा वो सब बर्बादी का भूत है और कि जब तक कि वो प्रधानमंत्री बने तब तक देश में कुछ भी नहीं हुआ और देखिए मैं आ गया हूँ और मेरे 56 इंच की छाती है और मैं नई चीज करूँगा, इस ये कहने से देश का 70% आवाम उनसे दूर होता है क्योंकि 70% आवाम ने उनको वोट ही नहीं दिया।
अय्यर साहब, ये बहुत आसान है कि एक प्रधानमंत्री जो देश को पिछले 2.5 साल से नेतृत्व कर रहा है उनकी आलोचना करना और सीधे सीधे ये कहना कि वो देश को सब फिरकों को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, बहुत आसान ये आपकी आलोचना है। लेकिन आप आम लोगों से बात कीजिए, आप सड़क पर जाइए, मध्यम वर्ग के लोगों से बात कीजिए, इस वक्त बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ऐसा काम कर रहे हैं जिसके जिक्र आपने किया। तो आपके नज़र में क्या विपक्ष की पार्टी का सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि वो सरकार पे तनकीद करे, आलोचना करे, प्रधानमंत्री को सवालों के कटघरे पे खड़ा करे, या खुद इस वक्त उस पार्टी को अपने भीतर भी झांकने की जरूरत है जिसको इस मुल्क की जनता ने रिजेक्ट किया है?
सत्ता में हो या न हो, कोई भी पार्टी हो उसको अपने तरफ देखना चाहिए क्योंकि हर वक्त कुछ न कुछ दुरुस्त करने की आवश्यकता रहती है। और फिर आपने मुझसे अनुरोध किया कि मैं पार्टी से ऊपर उठकर मैं अपनी राय आपके सामने रखूं, वैसा ही मैंने किया। वैसे मुझे पार्टी से उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, पार्टी ने मुझे एक तरफा कर दिया है, तो मैं पार्टी का कोई औपचारिक वक्ता नहीं हूं और जो मैं कह रहा हूं आपसे वो मेरी निजी राय है। मैं मानता हूं कि यदि आपने मुकाबला करवाया कि मोदी जी प्रधानमंत्री होने चाहिए या राजेश जोशी, तो शायद मोदी जीत जाए। लेकिन आप उनसे पूछिएगा कि देश को एक रखने के लिए जो बंटवारा हो रहा है, खास तौर पर राजनीति के आधार पर, दूसरा जो हमारी विरासत है, जो कांग्रेस की विरासत है, उसकी जो चोरी हो रही है ये कहकर कि सरदार पटेल उनके थे, या ये कहना कि मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न बनाना चाहिए क्योंकि वो गांधी के खिलाफ थे।
लेकिन इसके लिए कांग्रेस पार्टी खुद भी तो जिम्मेदार है क्योंकि सरदार पटेल आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में बहुत हद तक रहे ही नहीं जितना कि महात्मा गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, यही आलोचना कांग्रेस पार्टी की होती है कि सरदार पटेल को, लाल बहादुर शास्त्री को, अम्बेडकर को आप लोगों ने बहुत वर्षों तक दरकिनार रखा और एक नई ताकत आई है और वो उसको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रही है, इस तरह की इल्जाम लगते हैं।
मुझे कोई इतराज नहीं है कि कोई भी जो कमियां हमारी हैं उसको वो पूरा करे, लेकिन चोरी करके ये कहना कि सरदार पटेल उनमें से एक थे, इस पर मुझे इतराज है। कि सुभाष चंद्र बोस उनमें से एक थे, इस पर मुझे इतराज है। कि वो कहे कि डॉक्टर अम्बेडकर उनके उनमें से एक थे, इस पर मुझे इतराज है। हाँ ठीक है कि ये न भूलना चाहिए कि सरदार पटेल आज़ादी के पश्चात मात्र कोई 2-2.5 साल रहे, पंडित जी 17 साल रहे, तो उनका असर तो लाजमी है कि कम से कम 6-7 मरतबा ज़्यादा होगा आधुनिक भारत में। वैसा ही इंदिरा गांधी कोई 18 साल रहीं, उसमें से 15 साल वो प्रधानमंत्री रहीं, उनका भी प्रभाव बहुत होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर को इतना ऊंचा स्थान देने का काम गांधी जी ने ही किया, पंडित जी ने ही किया कि आप हमारे संविधान को बताइए।
अंबेडकर की डिबेट खैर अलग है, फिर भी आप बताइए कि ये जो भोपाल में अभी 8 लोग मारे गए हैं, आरोप है उन पर कि वो सिमी के कार्यकर्ता थे और भाग रहे थे तो मारे गए, इस पर आपके तासुरात क्या, ख्यालात क्या हैं?
8 इंसान थे। मुझसे सवाल किया जा रहा है कि वो आतंकवाद थे या मुसलमान थे। मैं कह रहा हूं कि इंसान थे और हमारे संविधान के अनुसार कोई भी इंसान को हम दोषी तब तक नहीं मान सकते हैं जब तक कि अदालत में सबूत पेश किया जाए और अदालत के तरफ से कोई निर्णय हो कि हाँ ये दोषी है। दूसरी चीज, सरकार का हित बनता है अदालत की इजाजत लेने के पश्चात कि किसी को फांसी दे दे, लेकिन उनको जान से मारना यदि कोई एनकाउंटर वाकई न हुआ हो वो बिल्कुल गलत चीज है।
इस पर चर्चा बहुत इस वक्त हो रही है, लेकिन ये कहना भी बहुत ही अनफेयर होगा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही हो रहा है। आपको याद दिलाऊं 1985 में आंध्र प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, 5 लोगों को पीछे हाथ बांध करके उनको गोली मारी गई थी, उनमें से एक किसी तरह भागा था और उन्होंने आके पत्रकारों को बताया था कि ये फेक एनकाउंटर हुआ है। क्या कांग्रेस इस तरह के काम नहीं करती रही या कांग्रेस की सरकारों के दौरान इस तरह के काम नहीं हुए हैं? ये आज ये क्यों कहा जा रहा है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही दौर में ऐसा काम हुआ है?
अव्वल तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने नहीं कहा, आपने कहा।
मैं आपको एक तथ्य बता रहा हूँ।
ये ठीक है, आपने कहा, मैंने नहीं कहा। तो यदि ऐसी चीज हुई हो कांग्रेस की सरकार में तो उसका खंडन मैं आज करता हूं, और यदि आप मुझे इसे पूछते तब भी मैं इसका खंडन करता। ये बिल्कुल गलत बात है कि कानून के दायरे से बाहर होकर किसी को भी उसका जान लेना बिल्कुल गलत बात है। और यहां तक मैं कहूं कि मैं शायद इकलौता हूं कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने कहा कि फांसी का सजा किसी को नहीं देना चाहिए। जब अफजल गुरु को फांसी दिया गया या यूसुफ मेमन को, तो तब भी मैंने कहा कि ये गलत है, ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अय्यर साहब, मैं आपको आप ही के कुछ जो लेख हैं उनके बारे में सवाल कुछ करना चाहता हूं। आपने नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू पे एक लेख कुछ ही दिन पहले लिखा था, और भी जगह आप लिखते रहे हैं, और आपने उसमें एक सवाल उठाया है कि कांग्रेस पार्टी को जो सॉफ्ट हिंदुत्व की कॉल है उससे सेड्यूस नहीं होना चाहिए, उसको हिंदी में क्या कहेंगे कि उसके उससे अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए या उसमें आकर्षित नहीं होना चाहिए। आप तमिल भाषी हैं और मुझे हिंदी के अपशब्द दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब है?
इसका ये मतलब है कि जबकि शायद अक्टूबर नवम्बर दिसंबर में मुझे लग रहा था कि राजीव जी खुद वो कदम नहीं उठा रहे थे जिससे कि हम रथ यात्रा वगैरह को रोकें और वो जो प्रोपेगेंडा चल रहा था उसको रोकें, उस समय मैंने राजीव जी को एक चिट्ठी लिखी थी जिसको मैंने छपवाया था हिंदुस्तान टाइम्स में, और उस आर्टिकल को राजीव जी के हाथ देते हुए मैंने कहा ये आपके लिए एक चिट्ठी है लेकिन इसका रूप आम जनता के लिए एक आर्टिकल है। और उसमें मैंने क्या लिखा था, जो पंडित जी ने 1947 से लेकर 1951 तक हमारे पार्टी के भीतर जो हिंदुत्व के शक्तियां थी और पुरुषोत्तम दास टंडन उसके प्रतीक थे, उनके खिलाफ जो उन्होंने किया और अंत में कहा कि सोमनाथ मंदिर को दोबारा बनाने में सरकार के हाथ नहीं होनी चाहिए, पार्टी की हाथ नहीं होनी चाहिए, और कि रामलीला ग्राउंड्स में वो गए महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर, तब उन्होंने कहा कि यदि किसी ने अपना हाथ उठाया धर्म के नाम पर किसी और को मारने के लिए तो मैं उनका मुकाबला करूंगा जब तक कि मेरे जीवन में कोई सांस हो, यदि मैं सरकार में हूं या बाहर हो।
ये तो इतिहास की बात हो गई।
जी जी, इसका मतलब ये बनता है कि हमेशा हमेशा हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए।
लेकिन नहीं रही कांग्रेस पार्टी, ये सच है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपने देखा है, ये तमाम लोगों ने देखा है, जो चाहे वो राम जन्मभूमि का मसला हो या ताला खुलवाने के बाद वहाँ शिलान्यास कराने का मसला हो। और दूसरी बात यह है कि आप नहीं, मेरा सवाल एक है, आप माफ कीजिएगा, एक सवाल मेरा यह है कि कांग्रेस पार्टी से उम्मीद, आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म की बात करती है, उम्मीद उससे ये करते हैं लोग कि एक स्टैंड लेंगी बहुत तरीके से। क्यों डरती है कांग्रेस पार्टी अगर आप नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई स्टैंड ले रहे हैं? गुजरात का जिक्र क्यों नहीं करते हैं आप लोग?
मौत का सागर कह दिया है हमने,
और उसके बाद फिर आप इतने डर गए कि दोबारा वो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि देश की जनता ने आलोचना बहुत की सोनिया गांधी की।
कांग्रेस से मुझे किसी ने नहीं निकाला ये कहने पर। देखिए, कुछ लोग हैं कांग्रेस के बहुत बड़े परिवार में जिनका सोच शायद हिंदुत्व के तरफ हो, लेकिन बीजेपी और हम में ये अंतर है कि हिंदुत्व के कारण ही वो राजनीति में है और हिंदुत्व का मुकाबला करने के लिए हम राजनीति में हैं। तो हो सकता है कि कभी कभी दूसरे को लगे कि हम जरा सॉफ्ट हिंदुत्व के तरफ जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हों तो मेरे जैसे लोग हैं पार्टी में जो कि खुलेआम कहने को तैयार है कि ये गलत दिशा है, नहीं जाना चाहिए।
आपकी बात को कौन सुनेगा? आप खुद ही कह रहे हैं कि आपको पार्टी से एक तरह से दरकिनार कर दिया है।
मैं अकेला तो नहीं हूं, मेरे पार्टी में बहुत से लोग हैं और एक विरासत है। आप यदि समझें,
आप जिनके विरासत की बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच बीच में रोक रहा हूं, आपकी पूरी बात होने देंगे, आप जिनकी विरासत की बात कर रहे हैं, राजीव गांधी को आपने उस एक लेख में कोट किया है जब नेहरू का आप जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। आपने कहा है उसमें कि नेहरू को अपने पोते की बात ही सुननी चाहिए, जिन्होंने कहा कि या तो ये देश रहेगा सेकुलर रहेगा, नहीं तो ये देश की जरूरत नहीं है। आपने लिखा है ये
तो उन्होंने खुद का,
राजीव गांधी ने खुद का उनको कोट किया है आपने। अब यह उसी राजीव गांधी पर इल्जाम है कि सॉफ्ट हिंदुत्व का इस्तेमाल उन्होंने भी किया जब बूटा सिंह गृहमंत्री थे, आपको मालूम है, जब नारायण दत्त तिवारी।
एक एग्जांपल ले, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। बूटा सिंह के बारे में, बूटा सिंह आए गए वहां और उन्होंने कहा कि जहां ये मंदिर का शिलान्यास करना चाहते हैं वो उस विवादित इलाके में नहीं है। शहाबुद्दीन मुझे तभी मिले और उन्होंने कहा कि बूटा सिंह गलत बोल रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि राजीव ने जो बूटा सिंह जो उनके होम मिनिस्टर थे उनका कहना माना और फिर शिलान्यास हुआ। लेकिन चंद महीने पश्चात उन्होंने खुलेआम अपने इंटरव्यू संडे मैगजीन से कहा कि मेरी तरफ से गलती हुई, मुझे नहीं पता था कि उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो कि विवादित एरिया में पड़ता है और वो मेरी गलती है, और उन्होंने गलती को स्वीकार किया।
अय्यर साहब, आपने ये बात पूरी पर्सपेक्टिव में रखी। इस वक्त जो हाल है कांग्रेस पार्टी का, एकदम दिशाहीन दिशाहारा पार्टी दिख रही है, आप उसके लिए क्या सोनिया गांधी को जिम्मेदार मानते हैं या राहुल गांधी को जिम्मेदार मानते हैं, या कांग्रेस की जो एक लेगेसी है, जो ट्रेडिशन है, मनमोहन सिंह से लेके और भ्रष्टाचार से लेके, किसको जिम्मेदार मानते हैं?
ये कहना कि कांग्रेस दिशाहीन है, कहीं नहीं जा सकती है, अरे भाई, सबसे बुरे दिन में, आज के दिन हमारे 44 सीट है। ठीक है, मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे मनमोहन सिंह पर, लेकिन पिछले 2.5 साल में, जबकि यही लोग जो कह रहे थे कि बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सब चोर हैं, सबको हम तिहाड़ जेल भेजेंगे, किसको भेजा इन्होंने? कोई एक केस साबित हुआ है? तो इल्जाम लगाना तो बहुत आसान है, और मुझे लगता है कि 2-4 ऐसे चीज हैं जो कि आने वाले दिनों में दिखाएगा कि बीजेपी पर भी बहुत से कलंक हैं, बहुत से सवाल हैं, प्रश्न चिन्ह हैं, जिनका जवाब उनको देना पड़ेगा।
ये थे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर। और अब वक्त है प्रमुख समाचारों का।
बीबीसी समाचार। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जंतर मंतर पर स्कूली बच्चों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों ने मास्क लगाकर प्रदर्शन किया। इधर दिल्ली सरकार ने आपात कदम उठाते हुए दिल्ली में निर्माण कार्य समेत कई तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लापता छात्र नजीब अहमद को खोजने के लिए दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों को पुलिस ने जंतर मंतर में हिरासत में ले लिया है। इराक के तिकरित में समारा शहर में हुए 2 आत्मघाती हमलों में 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी समूह ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। बीबीसी समाचार।
तो दिनभर की यह सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली दीपक जसरोटिया ने। आपसे अगली मुलाकात होगी 9:30 बजे कार्यक्रम घटना चक्र में, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप आ सकते हैं 24 घंटे हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।